दोनों अपने अपने कमरों में तो चले गए, पर उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि असली झटका बाकी है। किचन भी वैसी ही थी, एक छोटी सी वेस्ट हाइट दीवार। दोनों तरफ से अंदर की हर बात, हर आवाज साफ सुनाई देती। बालकनी भी कनेक्टेड थी, लिविंग रूम से दोनों की एक ही बालकनी थी, बस बीच में वही छोटी बाउंड्री। मतलब दो अलग लोग, दो बिल्कुल अलग दुनिया, मगर दीवार सिर्फ नाम की। इनारा बेदी दिल्ली की रहने वाली एक बेहद सादगी भरी पर बेहद खूबसूरत लड़की है। उसकी खूबसूरती लाउड नहीं बल्कि नेचुरल और काम है। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी है, बिना मेकअप के भी चमकती हुई। काली गहरी आंखें जिनमें सॉफ्टनेस भी है और ऑनेस्टी भी। लंबे घुंघराले काले बाल जिन्हें वो कभी बांध लेती है, कभी लूज रखती है और कभी बस एक छोटे से क्लच से पकड़कर ऑफिस लुक बना लेती है। पढ़ाई खत्म करते ही उसने एक छोटी सी लीगल फर्म में जॉब की थी। वहीं से उसने असली कोर्टरूम एक्सपीरियंस हासिल किया। अब उसे शहर की बड़ी और मशहूर फर्म के डेस्टिनी में काम मिला है, जो उसके करियर का सबसे बड़ा स्टेप है। उसका इंटरव्यू श्याम खन्ना ने लिया था, इसलिए वो ज्ञान कपूर को जानती ही नहीं, जबकि पूरा ऑफिस ज्ञान की एरोगेंस और एटीट्यूड के किस्से जानता है। इनारा को अब भी समझ नहीं है कि किस बड़े और पावरफुल आदमी के अंडर उसे काम करना है। वो दिमाग से कम, दिल से ज्यादा सोचती है। इमोशनल है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। किसी का दिल दुखाना उसे पसंद नहीं, पर खुद के साथ गलत बर्दाश्त भी नहीं करती। जरा सी बात पर हर्ट हो जाती है लेकिन किसी को कभी दिखाती नहीं। आज तक उसका कोई अफेयर नहीं रहा, न किसी में दिलचस्पी ली। उसकी सारी ऊर्जा पढ़ाई, इंटर्नशिप और करियर में लगी रही। वो सोशल नहीं, ज्यादातर अपने आप में रहने वाली लड़की है। इनारा का सपना सिंपल है, करियर में खुद का नाम बनाना, अपने दम पर आगे बढ़ना, खुद को साबित करना और एक ऐसी एडवोकेट बनना जिसे लोग उसके एथिक्स पर पहचाने। ज्ञान कपूर के डेस्टिनी का सबसे तेज दिमाग, सबसे शांत और सबसे खतरनाक वकील। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि उसके सामने झूठ, ड्रामा और बेईमानी टिकते नहीं। लंबा चौड़ा परफेक्टली बिल्ड शरीर पूरी तरह वर्कआउट से बना हुआ, हर मूव में पावर और कंट्रोल झलकता है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, शार्प जॉलाइन और आईज इतनी इंटेंस कि लोग नजरें चुरा लेते हैं। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस है जो किसी बॉन्ड लीडर में होता है। मुस्कान बहुत कम, और अगर कभी मुस्कुराए तो सामने वाला उसका मीनिंग समझ नहीं पाता। उसे नींद बहुत कम आती है, उसका पेट भी ठीक नहीं रहता। रात के 2-3 बजे तक फाइल्स पढ़ना उसकी नॉर्मल रूटीन है। घर में दखल उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपनी स्पेस, अपना टाइम और अपना साइलेंस किसी के साथ शेयर नहीं करता। जब भी उसे टाइम मिलता है वो जॉगिंग करने निकल जाता है। ये उसकी लाइफ का वही हिस्सा है जैसे दूसरे लोगों के लिए सांस लेना। ऑफिस में उससे सभी डरते हैं। उसकी आवाज ऊंची नहीं होती, पर उसकी चुप्पी ही किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती है। वो गलत आदमी नहीं है, असल में वो बहुत सही इंसान है, पर उसकी अच्छाई लाउड नहीं, क्वाइट और डिसिप्लिन्ड है। हर जूनियर वकील उससे दूर ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी नजरों में गलती की कोई माफी नहीं। वो जीतने के जुनून में डूबा नहीं, बल्कि जीतना उसकी आदत है। केसेस को वो चेस बोर्ड की तरह सोचता है, हर चाल सोची समझी, हर मूव कैलकुलेटेड। बेहद इंटेलिजेंट, लॉजिकल और शार्प फिटेड। वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, छोटे जेस्चर से लेकर बड़े स्टेटमेंट्स तक। गुस्सा बहुत कम आता है, पर जब आता है तो सामने वाला महीनों याद रखता है। उसकी माँ, डैड और एक छोटी बहन है जिन्हें वो बहुत प्यार करता है, पर उनके साथ भी दूरी रखता है। वो उनसे मिलता अवश्य है, पर उनके साथ नहीं रहता। उसके अपने घर में सिर्फ साइलेंस, लॉ बुक्स, वर्कआउट इक्विपमेंट और उसका अकेलापन है। बाहर से स्ट्रांग, कोल्ड, एरोगेंट लगने वाला ज्ञान कपूर असल में अंदर से बहुत वल्नरेबल और इमोशनल है, पर उसने उसे बंद कर रखा है। उसके पास प्यार, रिश्तों या डेटिंग के लिए समय नहीं। वो किसी के भरोसे रहना नहीं चाहता, इसलिए किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता। ज्ञान कपूर को अंदर ही अंदर पूरा यकीन था कि जैसे ही ये लड़की ऑफिस ज्वाइन करेगी और उसे पता चलेगा कि उसका बॉस वही है, ज्ञान कपूर, तो वो खुद ही बिना कुछ कहे ये फ्लैट छोड़ देगी। उसे ये भरोसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर लोग बॉस के साथ रहना तो दूर, बॉस के सामने खुलकर बात तक नहीं कर पाते। इसीलिए ज्ञान कपूर ने बिल्कुल भी तनाव नहीं लिया। वो उन लोगों में से था जो खुद तो स्ट्रेस नहीं लेते, पर सामने वाले को आराम से स्ट्रेस दे सकते थे। एक हल्की मुस्कान के साथ वो अपने कमरे में चला गया, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला था। इनारा भी अपने कमरे में चली गई। हालांकि उसने आते ही साफ कह दिया था कि वो यही फ्लैट नहीं छोड़ेगी, लेकिन मन ही मन वो जानती थी कि किसी अनजान नौजवान लड़के के साथ फ्लैट शेयर करना आसान नहीं होता। कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी फ्रेंड सीमा को फोन मिलाया। फोन उठते ही सीमा की आवाज आई, हाँ मैडम, अब क्या हुआ? इनारा घबराई हुई सी बोली, तू कब वापस आएगी? सच में मुझे पता नहीं यहाँ कैसे रहूंगी। सीमा हंसते हुए बोली, क्यों, अभी थोड़े दिन में तो मैं आ ही जाऊंगी, तो ऐसी परेशान क्यों लग रही है? इनारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ एक स्यापा हो गया गया मेरे साथ, सीमा चौंक कर बोली। अब तूने कौन सी गड़बड़ कर दी? इनारा की आदत हर बात पर स्यापा कहना। इशारा की बात सुनकर सीमा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ओ ये सच में थोड़ा अजीब है, अब तू करेगी क्या? इनारा थकी हुई आवाज में बोली, पता नहीं, एक बार तो यहीं रुक रही हूँ, फिलहाल मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, देखती हूँ क्या होता है। सीमा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सुन, रात को दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना, अच्छे से, डबल लॉक, पता नहीं वो आदमी कैसा होगा, किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसा इंसान है। इनारा ने आधा मुस्कुराते हुए कहा, तू मुझे डरा क्यों रही है? सीमा बोली, डरा नहीं रही, बस सावधान कर रही हूँ, शेयरिंग फ्लैट में रहते हुए सावधान रहना बहुत जरूरी होता है, तू नए शहर में है, अकेली है, बस ध्यान रख। इनारा धीरे से बोली, ठीक है, मैं अच्छे से लॉक करूंगी दरवाजा, तू टेंशन मत ले। पर फोन कटने के बाद भी उसके मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। आर्यन राजवंश अपने कमरे में बेचैन सा बैठा था, उसके दिमाग में ज्ञान कपूर की कही हुई बात घूम रही थी, अगर जय की कस्टडी चाहिए तो शादी कर लो, असली शादी नहीं चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हो। आर्यन ने गहरी सांस ली, वो चाहता तो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, मगर उसके सामने हमेशा सिर्फ सानवी का चेहरा आता था, वही मासूम सी मुस्कान, वही सादगी, वही नजरें जो उसके दिल में कहीं गहरे तक उतर चुकी थी। लेकिन एक बात उसके दिल में चुभी हुई थी, सानवी ने कृति की गलती छुपाई, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, आर्यन ने खुद से कहा, जैसे खुद को समझाना चाहता हो। वो अचानक उठ खड़ा हुआ, अपनी कार की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया, तेज कदमों से कार तक गया, दरवाजा खोला और कार स्टार्ट की। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, वो सीधा ड्राइव करता हुआ उस रेस्टोरेंट पहुंचा जहां सानवी काम करती थी। रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर उसने कार पार्क की, इंजन बंद किया मगर कार से उतरा नहीं, कुछ सेकंड कार में बैठा रहा, फिर उसने मोबाइल उठाया और सानवी का नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से उसकी मधुर हल्की थकी हुई आवाज आई, हेलो, आर्यन ने धीमे मगर गंभीर स्वर में कहा, सानवी क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सानवी उस समय किचन में काम कर रही थी, वो एक पल को रुकी, उसकी आवाज में कुछ अलग सा तनाव महसूस हुआ। हां आ रही हूं, उसने जल्दबाजी में कहा। सानवी ने जल्दी से अपने हाथ धोए, एप्रन उतारा और किचन से बाहर निकल आई। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकली, आर्यन गाड़ी में ही बैठा हुआ था। आर्यन ने शीशा नीचे किया और गाड़ी में आने का इशारा किया, वो उसके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। शादी करोगी मेरे साथ, उसने सीधे सीधे कहा। क्या? सानवी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वो क्या कह रहा है।
तुम्हारी ही वजह से मेरी जिंदगी में ये सब हो रहा है, तुम्हारी बहन की गलती के कारण मेरे पास से जय की कस्टडी चली गई, विक्रांत कपूरिया और जैसिका दोनों कंपनी में आ चुके हैं, और अब जय की कस्टडी के लिए वकील ने मुझे किसी भी तरह, असली या नकली, शादी करने को कहा है। तो कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम चुप रही, इसलिए अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, आर्यन ने एटीट्यूड से कहा।